नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सत्यव्रत मुनि यहाँ पे प्रणाम करते हैं, नहीं ठीक है चलेगा, इधर खोल दे। सबसे पहले क्या करते हैं, नमामि ईश्वरम। नमामि मतलब प्रणाम करना। किसको प्रणाम कर रहे हैं? ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं सत्यव्रत मुनि। कोई भी कार्य संपन्न करने से पहले ना हमको प्रार्थना करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। जैसे कि हमने 5 दिन का गीता कोर्स किया तो हमने सर्वप्रथम क्या किया, हम रोज क्या करते थे, मंगलाचरण गाते थे रोज। क्योंकि वो कार्य निर्विघ्न बिना विघ्न आए वो संपन्न होता है। अगर कार्य को, आपके कोई भी कार्य को संपन्न करना है अच्छे से, कि वो पूर्ण, मैं जो चाह रहा हूँ या मैं जो चाह रही हूँ उस तरह से वो संपन्न हो, तो क्या करना चाहिए हमको, पहले मंगलाचरण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए विघ्न विनाशक। जैसे गणेश जी उनसे प्रार्थना करना चाहिए, नरसिंह भगवान है उनसे प्रार्थना करना चाहिए, तो अपने गुरु हैं उनको प्रार्थना करना चाहिए, उनका हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं पहले, तभी वो निर्विघ्न बिना विघ्न आए वो कार्य संपन्न होता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं बिना हमको मंगलाचरण किए बिना कोई कार्य को नहीं करना चाहिए कभी भी। ये मंगलाचरण में बहुत ताकत होता है, बहुत ताकत होता है, क्योंकि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न होगा। अभी जैसे कि हमने किया गीता कोर्स, हो सकता है कि अगर हम मंगलाचरण नहीं कर सकते तो होता था लाइट चला जाए या फिर कुछ तो फॉल्ट हो जाए, कुछ तो हो जाए, हो गया तो फिर नहीं हो सकता है, या फिर होगा भी तो ढंग से नहीं होगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा बहुत सारा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले क्या यहाँ पे बता रहे सत्यव्रत मुनि, ये बताने जा रहे हैं लीला कथा ही भगवान का ही, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, वो मंगलाचरण कर रहे हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ। तो मंगलाचरण कर रहे हैं, किसका मंगलाचरण कर रहे हैं, ईश्वर का। तो सर्वप्रथम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। देखिए वास्तव में ना ये जो ना प्रणाम में, भगवान को प्रणाम करने में बहुत शक्ति होता है। मैं आपको एक कथा बताता हूँ। उस समय की बात है कि जब ही भगवान रामचंद्र अभी रावण का दमन करने के लिए सेना लेकर निकल पड़े, ठीक है, सेना लेकर भगवान रामचंद्र निकल पड़े, उस समय सब समुद्र के तट पे पहुँचते हैं और अलग अलग उद्यम करके और पुल बना देते हैं, सेतु बनाते हैं, ये सब बना के जब ही वो लंका में उस साइड पहुँच जाते हैं और समुद्र के किनारे ही अपना फिर से वहाँ पे स्टे करते हैं वो लोग, क्योंकि अभी अभी जस्ट समुद्र को पार किया है, लंका में पहुँच चुके हैं। वहाँ पे शिविर लगाया, बहुत सुंदर सा शिविर लगा के वहाँ पे सब लोग रात्रि निवास करने के लिए अपना स्थान, जो भी तंबू डेरा जो भी है सब बना दिया उधर, ठीक है, क्योंकि अभी दूसरे दिन फिर से निकलेंगे रावण की लंका की तरफ युद्ध करने के लिए। तो उस समय वहाँ पे जब शिविर लगाया भगवान रामचंद्र ने, तो उस रात्रि को ही, उस रात्रि को लंका की तरफ से एक असुर जो था, एक राक्षस जो था, वो उधर से आते हुए दिखा रात को। ये कैसे पता चला, क्योंकि शिविर लगाते हैं मतलब दूर दूर तक उसको रक्षा करने के लिए अलग अलग सैनिक तैनात भी रहते हैं, क्योंकि अभी हम कौन से क्षेत्र में आ गए, अपने दुश्मन के क्षेत्र में आ गए हैं, तो और सतर्क रहना है, इसलिए अलग अलग जो भी बानर सेना था, अलग अलग लोगों का ड्यूटी था रात्रि को। तो उनके अनुचरों ने, भगवान रामचंद्र के अनुचरों ने देखा कि बहुत दूर से कोई तो एक राक्षस हमारे शिविर की तरफ आ रहा है, तो उनको क्या लगा, या तो भेद जानने आ रहा होगा कि ये लोग क्या प्लान करने वाले हैं, या तो फिर रात्रि को हो सकता है हम किसी को मार दे ऐसा, इसलिए तुरंत अनुचरों ने रात्रि के समय ही, संध्या के समय ही हुआ ये था, रात्रि हो रहा था, उसी समय अनुचर भाग के आए भगवान के पास। आकर उन्होंने सबसे पहले जामवंत और हनुमान जी इन लोग को बताया कि एक राक्षस लंका की तरफ से आ रहा है, क्या करना है, आप लोग की अगर आज्ञा हो तो हम उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं, आपकी आज्ञा है तो हम खत्म कर देते हैं उसको। तो उस समय जामवंत जी, हनुमान जी भगवान के शिविर में गए, भगवान राम के पास गए, भगवान राम के पास गए कि बोले कि प्रभु लंका की तरफ से कोई तो एक राक्षस आ रहा है और हमारा भेद जानने आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसको खत्म कर देते हैं उधर, आपकी परमिशन चाहिए। तो प्रभु राम ने यही बोला, देखो वो हमारी तरफ आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है तो मेरे पास जो व्यक्ति आता है हम उसको तकलीफ नहीं दे सकते हैं, वो किस भाव से आया हो पूतना जहर पिलाने आई थी भगवान को, अपने स्तन में कालकूट जहर भर के आई हुई थी भगवान को पिलाने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको क्या किया, ग्रहण किया। ग्रहण क्या, किसी भी भाव से कोई भी भगवान के पास आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, कभी भी मना नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मारने की जरूरत नहीं है, आ जाने दो उसको, देख लेते क्या करेगा ऐसा। तो उस समय सब लोग सतर्क थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र निश्चिंत थे कि ठीक है आने दो, देखते हैं क्या करता है। तो उस समय क्या हुआ, तो कोई और नहीं था, वो विभीषण था। ये विभीषण कौन है, रावण का भाई है, विभीषण था वो। क्योंकि क्या हुआ, ये विभीषण ही लंका में एक ऐसा व्यक्ति था जो कि भगवान का बड़ा भक्त था, वो भक्ति करता था भगवान का। ये रावण जो है ना, उस बहुत क्रोध किया करता था, उसे बहुत बहुत गुस्सा आता था उसको कि मेरे घर में रखे, बोलते ना आप घर में रखे हमारा भोजन हमारे पास खा रहा है और उसमें उस थाली में छेद कर रहा है ऐसा। तो इस प्रकार से अनेक धारणाएं थी और बहुत गुस्सा करता था वो, बहुत ही गुस्सा करता था रावण विभीषण के ऊपर। लेकिन विभीषण परम भक्त भगवान के, तो उसने क्या किया, रावण ने विभीषण के इस प्रकार के डेली भक्ति पूर्वक भगवान का जप करना, नाम इत्यादि करना, ये सब कर रहा था, तो उसको बहुत गुस्सा आया। एक दिन की बात है कि उसने लात मार के बाहर निकाल दिया लंका से। जब ही विभीषण निकले ना, उस समय रावण ने लात मार के भगाया था विभीषण को कि यहां से निकलो जाओ। तो उस समय जब ही लात मार के बाहर निकल दिया, तो विभीषण कहां पे, भगवान के पास उस शिविर के लिए निकल पड़े थे। अभी विभीषण जब भगवान के पास आए, तुरंत ही भगवान के शरणागत हो गए, तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। तो उस समय मैंने इस बात के लिए ये कथा को बताया क्योंकि प्रणाम में कितनी शक्ति हो, देखिए इस बात के लिए इस कथा को मैंने बताया। इस कथा से शिष्टाचार अनेक ले सकते हैं, लेकिन अभी जो सत्यव्रत मुनि यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं ना, तो उस प्रणाम में क्या शक्ति हो देखिए। ओ राक्षस विभीषण, भगवान को आते ही उनके शरणागत हो गया। उस समय प्रभु रामचंद्र उसको उठाने के लिए झुके और झुके और पकड़ के विभीषण को उठाते हुए बोले कि उठो लंकेश। सोचिए, उनके वो प्रणाम किया और विभीषण को उठाते हुए भगवान ने क्या बोला, उठो लंकेश। लेकिन लंका का रावण को, लंका का राजा कौन था, रावण था, लेकिन बोल किसको रहे, लंकेश विभीषण को बोल रहे। इसका मतलब क्या, प्रणाम करने मात्र से उसको लंका का राजा बना दिया भगवान ने। अभी तो युद्ध करना जाना बाकी है, मारना बाकी है रावण को, लेकिन क्या किया, प्रणाम किया, उठो लंकेश बोला। अभी क्या हो गया, हनुमान जी आए, जामोहन जी आए, क्योंकि प्रभु आपने ये क्या बोला, अभी तक तो हम युद्ध भी करने नहीं गए और वो रावण इतना शक्तिशाली है, प्रभु कहीं अगर हम युद्ध में पराजित हो गए तो आप क्या करेंगे, आपका वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आपने उसको लंकेश बोला, मतलब लंका का राजा बनाना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर हम कहीं पराजित हो गए रावण से तो, क्योंकि वो तो इतनी बड़ा पराक्रमी रावण है ना। तो उस समय प्रभु राम ने एक बात कहा, बोले हे जामोहन जी, हनुमान जी, आप चिंता मत करिए, मैंने इसको राजा बनाने के लिए बोला हूं, अगर कहीं रावण से युद्ध करते करते हम पराजित भी हो गए ना, फिर भी मैं इसको राजा बनाऊंगा। हो सकता है कि लंका का राजा नहीं बनाऊ, लेकिन अयोध्या का राजा इसको बनाऊंगा, लेकिन राजा जरूर बनाऊंगा इसको, क्योंकि मेरे शरण में आया है, इसलिए मैं राजा जरूर बनाऊंगा। विचार करिए, ये प्रणाम में शक्ति है। सोचिए कि जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण कितना घोर तपस्या किया था, शिव जी को प्रसन्न किया था, आपको पता है, दशानंद रावण घोर तपस्या किया था, शिव जी को प्रसन्न किया था, अपने एक एक मस्तक को काट के आहुति दे रहा था। अंत में जब दसवां मस्तक काटने गया ना, तब शिव जी प्रकट हो गए। इतना घोर तपस्या किया था और कई सालों तक तपस्या किया था, और जब शिव जी प्रकट हुए ना, तो शिव जी इतना खुश हुए कि उसको सोने की लंका प्रदान किया। वो लंका जो था ना, पूरा स्वर्ण का लंका था, वो सोने की लंका प्रदान किया। लेकिन मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने क्या किया, इतना घोर तपस्या किया, लेकिन उस लंका को प्राप्त करने के लिए विभीषण ने मात्र एक प्रणाम कर दिया राम जी को, वो लंका प्राप्त हो गया उसको। विचार करिए, ये होता है प्रणाम में शक्ति, ये प्रणाम में शक्ति होता है। इसलिए सत्यव्रत मुनि इस बात को जानते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या कर रहे हो, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नमाम ईश्वरम। अभी ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर को डेफिनेशन भी यहाँ पे बताते हैं कि वो ईश्वर कौन है। तो कहते हैं आगे क्या है, स्वर्ण सच्चिदानंद रूपम, सत चित और आनंद, इसका चर्चा हम गीता कोर्स में किए थे। सत चित आनंद, वो भगवान जो कि सच्चिदानंद है, परम आनंदमय है, परम ज्ञानमंद ज्ञानमय है और पूर्ण रूप से शाश्वत है, सच्चिद आनंद, ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। अभी तो प्रश्न यह उठता है कि उस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो कि सच्चिदानंद रूप है, उनका सच्चिदानंद रूप है, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, वो ईश्वर कौन है, सच्चिदानंद रूप है। अभी प्रश्न ये उठता है कि वो ईश्वर रहते कहाँ है, कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो कहाँ रहते हैं, तो लसत कुंडलम के बाद क्या आया है, गोकुले ब्राजमानम, कहाँ रहते हो, गोकुल में रहते हैं, और गोकुल में रहकर, गोकुल में रहकर वो भ्रमण कर रहे हैं, ब्राजमानम लीला कर रहे हैं। तो प्रणाम करता उस भगवान को जैसा सच्चिदानंद विग्रह है, और वो रहते कहाँ है, तो कहते गोकुल धाम में, वृंदावन धाम में रहते हैं। देखिए अभी ये वृंदावन धाम जो है, कभी गए कोई वृंदावन धाम, आप गए, आप भी गए हो, अरे वाह आप भी गए हो, हाँ तो गए जाएगी साथ में, हाँ आप भी गए हो, आप भी गए हो, अच्छा तीन लोग गए, अच्छा बहुत छोटे थे तभी, आप कब गए थे, कितना, सात महीने पहले गए थे, अभी गए थे, अच्छा। ये वृंदावन जो गोकुल धाम है, भगवान ने यहाँ पे प्रकट रूप में लीला किया, ये पूरा ब्रज धाम वृंदावन जो है ना, ये 84 कोस में स्थित है। 84 कोस कितना होता है, 1 कोस 3 किलोमीटर, 84 × 3, वो कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो 84 कोस में ये वृंदावन धाम पूरा भगवान का, और वहां पे भगवान की अनंत लीलाएं हुई है, इतनी मधुर मधुर लीलाएं हुई है ना, अब उस पास्ट टाइम को सुनेंगे ना सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, इतनी मधुर मधुर लीलाएं भगवान की इस वृंदावन धाम में हुई है। हम कभी प्लान करेंगे ऐसा, अगर हम धीरे धीरे गेट टुगेदर होंगे, लेकिन उससे पहले ये प्रिपरेशन है एक्चुअली। वृंदावन धाम में हर व्यक्ति को जाने की योग्यता नहीं प्राप्त होती है, वृंदावन धाम वही जा सकता है जिसको श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, या जिसके ऊपर श्रीमती राधा रानी कृपा करती है वही वृंदावन में जा सकता है, अन्यथा वृंदावन में धाम में जाने का, प्रवेश करने का किसी की योग्यता हो ही नहीं सकती है। उस योग्यता को केवल श्रीमती राधा रानी देती है, जिसके ऊपर श्रीमती राधा रानी का कृपा, उसी का प्रवेश वृंदावन में होता है, अन्यथा नहीं। तो अभी उस कृपा को प्राप्त करना है, तो ये मैंने एक शुरुआत का प्रोसेस दिया आप लोगों को कि एक माला का जब ये उससे कृपा प्राप्त होगा उसका, तो ये पहले कृपा के भाजन बनेंगे, फिर हम कभी प्लान करेंगे कि साथ में जाएंगे, साथ में जाके उस वृंदावन धाम में दो भी दो चार पांच दिन में हम उन स्थानों पे जाएंगे। अभी जहां पे लीला यशोदा मैया ने किस प्रकार से बाधा, आज भी वो उखल है, आज भी उखल का दर्शन होता है, उखल है 84 खंभा, आज गोकुल गोकुल नंद भवन आज भी है, जहाँ पे भगवान खेलते थे वहां पे आज भी वो रमन ऐसे स्थान है, धूल है जिसमें भगवान खेलते थे, आज भी जाते वक्त लोग तो वहां पे धूल में सुंदर तरीके से खेलते हैं। कितना रम्य वातावरण है वृंदावन का, विचार इमेजिन करिए, जो लोग नहीं गए, बहुत सुंदर बहुत ही रम्य स्थान है वृंदावन धाम। अगर हम उन लीला स्थलियों पे अगर हम जाते हैं तो अलग अलग जगह जहाँ जितने भी लीला स्थलियां आज भी प्रकट रूप में वृंदावन धाम में है। तो इस प्रकार से वृंदावन में भगवान जहाँ पे रमण करते हुए ब्रजमानम रमण करते हुए वो अनेक अनेक लीलाओं को संपन्न करते हैं। अभी अभी आप लोगों ने शरद पूर्णिमा के दिन क्या किया रहेगा, डांस किया रहेगा, तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने जो डांस किया ना, वो स्थान भी है रास मंडली, आज भी है वो स्थान है रास मंडली। तो इस प्रकार से उस रास मंडल में जाने के लिए शिव जी गोपी का रूप धारण किए, क्योंकि वहां पे पुरुषों का प्रवेश नहीं था, गोपी का रूप धारण किए, गोपी का रूप धारण करके उसके अंदर गए, लेकिन फिर पता चल गया कि यहाँ पे कोई पुरुष एंट्री मार दिया है। हालांकि वो गोपी के रूप में थे, लेकिन गोपियों ने पता कर लिया कि कौन यहाँ पे एंट्री मारा है, और शिव जी का हालत खराब कर दी वो लोग, क्या बोलते चिकोटी काट, क्या बोलते चिमटी चिमटी काट काट के ना शिव जी का एकदम हालत कर दिया। वो तो पौर्णमासी की कृपा से शिव जी बचे, लेकिन वो लालायित रहते शिव जी इस रास लीला का दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से वो रम्य स्थान आज भी है, इसलिए उसके बाद से वहां पे शिव जी का स्थान है जो वृंदावन धाम में उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव, और गोपी के रूप में उनका पूजा होता है वहां पे, गोपेश्वर महादेव के रूप में। बहुत सुंदर सा गोपी का रूप है उनका वृंदावन धाम में, गोपेश्वर महादेव। तो अनेक लीला स्थलिया वृंदावन धाम में, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, राधा रानी का धाम, कौन सा बरसाना धाम, नंदगांव जहाँ पे भगवान प्रकट हुए, नंद महाराज का घर, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे पूरे 84 कोष में प्रकट ये सारे लीला भगवान का। आज भी भक्त लोग जाके उन लीलाओं का आनंद लेते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सा दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो धाम है वृंदावन धाम की अति महिमा है, जहाँ पे गोकुले गोकुल में भगवान क्या कर रहे हैं, ब्रजमानम रमण कर रहे हैं। तभी प्रश्न उठता है कि रमण करते हुए क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि लसत कुंडलम, क्या कर रहे, भाग रहे हो। और कैसे पता चल रहा है कि भाग रहे हैं, तो लसत कुंडलम, क्योंकि उनके जो कुंडल है ना वो हिल रहे हैं। जब व्यक्ति कोई भागता है चलता है, भाग रहा है ना, क्योंकि मैया दौड़ा रही है डंडा छड़ी लेके, तो भाग रहे हैं, लेकिन उनके जो कुंडल है ना कान में वो हिल रहे हैं। इसलिए वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि लसत कुंडलम, उनके कुंडल जो है हिल रहे हैं। लेकिन बहुत वर्णन कर रहे हैं कि बहुत सुशोभित हो रहे हैं। अभी जनरली हम आभूषण पहनते तो क्या होता है, हम सुंदर दिखते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान के जो आभूषण है ना, वो भगवान के शरीर में भगवान जब पहनते ना, वो आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है भगवान की वजह से। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम आभूषण पहनते हैं तो हमारी सुंदरता बढ़ती है, लेकिन आभूषण भगवान जब पहनते ना तो उस आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे कि वो आभूषण जो है वो लसत कुंडलम, वो जो कि लटक रहा है। और उसके बाद फिर क्या, तो परामिष्ट मत्यंत, परामिष्ट मत्यंत तो मतलब पीछे से, परामिष्ट मतलब पीछे से, कौन क्या कर रही है पीछे से, द्रुत गोप्या, गोप्या जो माता है यशोदा है, वो पीछे से उसको माँ ने दौड़ा रही है, और क्या किया उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया है ना। ये श्लोक का ये अर्थ है कि सत्यव्रत मुनि पहले मंगलाचरण करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, सच्चिदानंद भगवान जो है, और उसके बाद वो वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैया यशोदा उनको दौड़ा रही है, वो भाग रहे हैं, और उस प्रकार से वो फिर पकड़े गए। तभी क्यों पकड़े गए, तो क्या हुआ, वो उखल के ऊपर चढ़ गए। पहले तो भागते भागते पहले छुपे हो, उखल के ऊपर चढ़ के जाके बैठे हुए थे। उखल, उखल जानते हो, हाँ उखल आता है जिसके अंदर ना, गांव में देखे ना गया, पहले जो गांव के लोग आए उसमें गेहूं रखेंगे, उसको कूटेंगे, हाँ जो भी बोलते हो तो उसको कूटते हैं। हाँ, किसी घर में, आज मेरे घर में अभी भी है, गांव में अभी भी है, वो एक लंबा सा लकड़ी होता है, हाँ उसको पकड़ते हैं हाथ में, जिसको हाँ क्या बोलते हैं उसको, मुसल बोलते हैं, उसको मुसल बोलते हैं, जो कि पकड़ के उसको, हाँ बीच में पतला रहता है। ये जो गांव की जो सभ्यता है ना, ये सब सारे चीजें ये आजकल नष्ट हो चुकी है, सिटियों में तो है ही नहीं। ये बहुत बड़ा चीजों को बहुत, अभी जैसे कि मुसला, ये मुसल का नाम जो है ना, अभी ये मुसल जिसके घर में रहता है, जब ये मुसलाधार बारिश होता है ना, ये मुसल को घर से बाहर फेंक देते हैं, वो मुसलाधार बारिश रुक जाता है, सब लोग अपने अपने घरों से उस मुसल को बाहर फेंक देते हैं जो, तो वो मुसलाधार जो वर्षा है ना उसको कंट्रोल में हो जाता है वो। ये टेक्निक है, बहुत सारे चीजें ऐसे गांव के जो कि हमने अपना नहीं रहे, वो सब छोड़, वो एक कल्चर ही चला गया एक्चुअली। तो बहुत बड़ा उखल था, भगवान उसके ऊपर चढ़ गए। तो अभी उखल के ऊपर क्यों चढ़े, और उसके बाद वो भागे क्यों, और उसके बाद माँ ने पकड़ा तो क्या किया, क्या है तीन चीज बताए, उखल के ऊपर चढ़े क्यों, और उसके बाद भागे क्यों फिर, क्योंकि मैया ने जब पकड़ लिया ना, चढ़ के छुपे हुए थे पहले पर्दे के, तो मैया ने पर्दा हटाया तो दिख गए, दिखा जैसे, तो तुरंत कूद पड़े नीचे, कूद पड़ के भागने लगे। तो क्यों भागे, पहली बात है उखल के ऊपर क्यों चढ़े, फिर क्यों भागे, और मैया ने पकड़ा तो क्या किया, तू भी कंटिन्यू आगे। ये हम कल सुनेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस अष्टकम को गाते हैं, और उसके बाद फिर दीपदान करेंगे, ठीक है। और ये जो पेपर है ना, ये पेपर इकट्ठा करके रोटे, पेपर और फोटो दोनों रोटे चलते रहिएगा।
Thank you.
दाल लेते हैं फिर जलाते हैं। जय सुधा दामोदर थी, जय श्री दामोदर अष्टकम थी, जय। तो अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल परसों मैं आप लोग को भी बोलोगे कि आप जाओ बोलूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है।
नमामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले व्राजमानम।
मेरे बात बोलेंगे सब लोग, हाँ राइट।
ईश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले व्राजमानम यशोदा भियो लोकलादवमानम परामिष्टमात्यन्ततो धृतगोप्या
सुनते जो है अलग अलग सुने।
रुदन्त मुहुर्नेत्र युग्मं वृजन्तं कराम्बुज युग्मेन सातङ्क नेत्र श्वास कंपात्रिरेकाकंकंद सीताग्रैव दामोदरं भक्तिवदं श्वास कंपात्रिरेकाकंकंद सीताग्रैव दामोदरं भक्तिवदं इति दिक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोषं निमाञ्जन्तमाख्यपयन्त वीरानन्दकुण्डे स्वगोषं निमाञ्जन्तमाख्यपयन्तं तदीयेषु काव्येषु भक्तलितत्वं पुनः प्रेमतास्तं सता वृत्तिवन्दे प्रेमतस्तं सदा वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं नामोत्सवदिम्बा न चान्यं वृणेऽहं वरे सादपीय वरं देवमोक्षं नामोत्सवदिम्बा न इदं देव पूर्णात् गोपाल बालं सदा निमानस्याभिरास्तं कि मन्ये सदा निमानस्याभिरास्तं कि मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमचन्तनिले गोप्या मो चुम्बितं बिम्बरक्तधरमे मनस्यभिरासामलं लच्छलाभे रक्तधरम्बे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमन प्रसीद प्रभो दुख जाला विमानम कृपा दिशे रेशा तेरे नाम बतानो ध्यान समा में क्या मेदत देशा कुबेरात्मजवतमूर्तेवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिराजकृतस्यवयदयामुचितोभक्तिरा तथा प्रेमा भक्तिं सकामे प्रयच्छ नमोस्ते गृहोमेष्टि दामोदरेह प्रेम भक्तिं सकामे प्रयच्छ नमोस्ते गृहोमेष्टि दामोदरेह नमस्ते सुदाने स्फुरदीप्ति दाने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाने नमस्ते स्फुरदीप्ति दाने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्द लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्द लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्द लीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम प्रथम राम 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 हरे हरे ओ केला जो है ना केला रोक ले आओ Come on. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा माधव।